नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कहो कल्याणी, जिसे लिखा है आभा श्रीवास्तव में। यह कहानी ब्याह के 6 महीने बाद ही अपना सुहाग खो चुकी कल्याणी के जीवन का कोई अभिप्राय नहीं था, लेकिन अमोल अनजाने ही उसकी खुशी की वजह बन गया। क्या यह रिश्ता कोई मुकाम पा सकेगा? चलिए कहानी सुनते हैं कहो कल्याणी। कल्याणी के घने काले बाल पीठ पर बिखरे थे। उसका जूड़ा समेटते वह सीढ़ी उतरकर आंगन में निकल आई। कल्याणी, आप आई है, कितना काम पड़ा है? नंदिता भाभी उल्हाने से बोल पड़ी। चल चटपट पीछे का कमरा मिलकर साफ कर ले, मेहमान आने वाले हैं। कल्याणी कोतूहल से पूछ बैठी, कोई खास मेहमान है क्या भाभी? हाँ भाई है मेरा, भाभी बेहद व्यवस्था से बोल पड़ी। महीनों से बंद पड़े कमरे की कुंडी खोलकर कल्याणी अंदर पहुंची, पीछे पीछे भाभी भी आ गई। मेहरी 2 दिन की छुट्टी पर है, सोचा अपन दोनों मिलकर सफाई कर लेते हैं। साड़ी का पल्लू कमर में लपेट कर भाभी और कल्याणी कमरे की सफाई में जुट गईं। 2 घंटे में ही कमरा धूल पुछ कर निखर गया। कल्याणी ने खिड़की पर घुले साफ पर्दे लगा दिए, फिर पढ़ने वाली मेज पर नया मेजपोस और टेबल लैंप सज गया। कल्याणी ने आले पर भगवान की फोटो पोछ कर उसके आगे ढेर से अगरबत्तियां भी जला दी, ताकि बासी बंद कमरे की गंध उनकी खुशबू से दूर हो जाए। पलंग पर साफ चादर सज गई और कमरा चमक उठा। कल्याणी दीदी, हमारा सवाल नहीं निकल रहा, छोटी बहन प्रिया ने ऊपर खिड़की से झांककर उसे बुलाया। आती हूँ बाबा, कल्याणी चलने को हुई तो नंदिता भाभी ने एक अदबुना स्वेटर उसे पकड़ा दिया। अमोल के लिए स्वेटर डाला था कल्याणी, आधा ही बुन पाई हूँ, समय ही नहीं है, पूरा कर देगी? हाँ भाभी, हो जाएगा, कहते हुए कल्याणी ने स्वेटर ले लिया। नंदिता भाभी को अचानक ही मानो ममता से उमड़ आई। अरे कल्याणी, चाचा जी तेरे ब्याह की चर्चा कर रहे थे उस दिन, क्या हुआ? बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, अभी क्या उम्र है तेरी, इतनी सी उम्र में पति का साथ छूट गया, सब भाग्य का लेखा है, भाभी ने ठंडी सांस छोड़ी। कल्याणी गुम सुम खड़ी थी, अपना खोया हुआ सौभाग्य ढूंढने कहाँ जाए, अब तो 5 बरस होने को है, 3 बहनों में सबसे बड़ी कल्याणी, सुंदर तो नहीं किंतु बेहद आकर्षक, मध्यम रंग, औसत कद काठी, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घने बाल उसे और भी मोहक बना देते हैं। माँ मृत्युशैया पर थी तो उनकी अंतिम इच्छा थी कि जीते जी कल्याणी का ब्याह उनकी आंखों के सामने हो जाए। उसी बरस कल्याणी ने बीए पास किया था। बाबूजी ने अपनी समझ से घर पर अच्छा ही ढूंढा था, किंतु भाग्य का लेखा कुछ और ही था। माँ के सामने ही कल्याणी का ब्याह हुआ और माँ को मानो संजीवनी मिल गई थी, किंतु ब्याह के 6 माह के अंदर ही सड़क दुर्घटना में कल्याणी का सब कुछ छिन गया। इस धक्के को माँ ना सह सकी और समय से पहले ही चल बसी। कल्याणी के ससुराल में सब ने चाहा कि कल्याणी वहाँ रहे, अपने से 2 बरस छोटे देवर की ब्याहता बनकर, किंतु कल्याणी ने विद्रोह किया। इस सुझाव के पीछे पति की सरकारी नौकरी और बीमे की रकम का लालच था। चुपचाप सब कुछ छोड़कर वह मायके चली आई। बाबूजी के घर में उसे आश्रय मिल गया था। बीमे के कागजों पर दस्तखत करके कल्याणी ने पूरी रकम ससुराल वालों को थमा दी और स्वयं व्यस्त रहने के लिए पति का दफ्तर ज्वाइन कर लिया। पिछले बरस जब कल्याणी की मंजली बहन का ब्याह हो गया तो अचानक ही बाबूजी कल्याणी के पुनर्विवाह के लिए उकला उठे थे। नंदिता भाभी कुछ 1 बरस पहले उन लोगों के पड़ोस में आकर बस गई थी। जीना उतरते समय आते जाते भाभी से बात हो जाती थी। वे संतानहीन थी, उनके पति नामी वकील थे, उनके घर में बस सभी कुछ था जिनका कल्याणी के घर में अभाव था। नंदिता भाभी से स्वेटर लेकर कल्याणी चुपचाप अपने घर चली आई। छोटी को सवाल समझाकर भाभी का स्वेटर पूरा करने में जुट गई। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, भाभी का बड़ा मन था कि उनका भैया उनके साथ हाथ का बुना स्वेटर पहने, उसने आधी रात तक जग कर स्वेटर का गला बनाकर उसे सिल कर पूरा कर दिया। कल सुबह ऑफिस जाते समय वो उसे भाभी को दे देगी, उसने सोचा। अगले दिन सुबह हमेशा जूड़ा लपेटने की जगह कल्याणी के अन्यासा ही बालों को एक ढीली वेणी में गूंथ लिया था। परिपाटी से साड़ी बांध कर उसने स्वेटर का जैकेट उठा लिया। उसके नीचे झांक कर देखा, भाभी का आंगन सोना था। स्वेटर देने के बहाने वह नीचे चली आई। ठक ठक उसने दरवाजे पर थाप दी। झटपट भाभी निकल आई। आ रही कल्याणी, सामने सोफे पर उनका भाई बैठा था। यह कल्याणी है अमोल, पड़ोस में रहती है, विधवा है बेचारी, भाभी ने सहानुभूति दिखाई। कल्याणी के मन में कहीं खंजर सा चुभ गया। संकोच से भर कर उसने नमस्ते की। निगाह भर कर उसने अमोल को देखा तो चकित रह गई। उसके स्वर्गीय पति से कितनी छवि मिल रही थी अमोल की। वैसा ही गोरा रंग, घुंघराली बाल, चौड़ा माथा। वह सोच में पड़ गई। सहसा उसे समय का ध्यान आया। चलो भाभी, दफ्तर को देर हो रही है, आप कहीं नौकरी करते हैं क्या? अमोल ने पूछा। हाँ, अनुकंपा के आधार पर पति के ही दफ्तर में नौकरी मिली है इसे, नंदिता भाभी बीच में ही बोल पड़ी। कल्याणी का चेहरा उतर गया था। दोबारा नमस्ते करके वह बाहर चली गई। उसने कुछ निर्दयता से स्कूटी स्टार्ट की। उसके कर्कश स्वर में मानो कल्याणी की तकलीफ कुछ कम हो गई। एक बार फिर दफ्तर पहुंचकर उसे वहां के नीरस वातावरण में रम जाना होगा। वही बेजान फाइलें, कंप्यूटर के आंकड़े, सहयोगियों की निर्लज बेसुरे ठहाके उसके पलों को कोर ना जाने क्यों गीले हो गए। दफ्तर में भी पूरा दिन वह अनमनी ही रही। एक खालीपन मानो पीछा कर रहा था। उसकी यादों में अमूल का चेहरा पीछे दौड़ते हुए बार बार एक बेहद हसमुख आत्मीय चेहरा मुखर होकर सामने आ रहा था। एक मीठी मधुर स्मृति बार बार दस्तक दे रही थी। दफ्तर से लौटते समय सब्जी के ठेले के पास नंदिता भाभी एक बार फिर दिख गई। अरे कल्याणी, लौकी खरीद रही है, हमारे अमोल को लौकी के कोफ्ते बड़े पसंद है, तू तो बड़े अच्छे बनाती है ना। वे अपनेपन से मुस्कुराई। कल्याणी ने सब्जी तुलवा ली थी। भाभी वहां से बाजार निकल गई और कल्याणी वापस घर आ गई। स्कूटी खड़ी करते समय उसने देखा कमरे में उजाला था। ना जाने क्यों कल्याणी का मन एक विचित्र सी उत्कंठा से भर गया था। आहट सुनकर अमोल कमरे से बाहर निकल आया। रोज रोज इसी समय लौटती हैं आप? जी। कल्याणी ने सब्जी का झोला उठा लिया। हवा में हल्की खुनक सी थी। उसने साड़ी का पल्लू कंधे पर लपेट लिया। शनिवार रविवार को तो छुट्टी रहती होगी, उसे लगा कि अमोल उससे बात करना चाह रहा है। कल्याणी धीरे से मुस्कुराई। उस दिन तो आपकी भी छुट्टी रहती होगी। अमोल धीरे से हंस पड़ा। मैं तो यहाँ नौकरी ढूंढने आया हूँ, आपकी तरह नौकरी वाला नहीं हूँ अभी। उनकी बातचीत में एक परवाह मिल गया। कल्याणी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई तो बाबूजी जाप कर रहे थे। उसे देखकर जाप बंद कर दिया। छोटी की कोई सहेली आई थी, वे दोनों अपनी बातों में मगन थी। कल्याणी ने सैंडल उतारकर सब्जी का थैला रखा, रसोई में जाकर गैस पर चाय का पानी रखा। उनका परिवार मध्यवर्गीय परिवार था। कल्याणी ने बहुत दिनों तक एक गहरी दृष्टि रसोई में घुमाई। उसके ब्याह से पहले घर की सफाई पुताई हुई थी, उसके बाद से तो घर का रंग रोगन नहीं हुआ। इतना पैसा ही नहीं जुटा पाए, जो थोड़ा बहुत पैसा जुटा भी तो माँ की बीमारी, मंजली के ब्याह में खर्च हो गया। कल्याणी सोच में डूब गई। उसकी आंखों के सामने नंदिता भाभी का बेहद सजा सवरा घर घूम गया। चाय लेकर वह बाबूजी के निकट ही बैठ गई। बाबूजी ने उसे तरल दृष्टि से देखा और एक बार पुनः पूछ बैठे, बेटा कुछ अपने बारे में सोच रखा है तूने? कल को छोटी भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, मैं कब तक बैठा रहूँगा? एक रिश्ता लाए थे सदानंद चाचा, तू कहे तो बात चलाओ। लड़का वकील है, दो छोटे बच्चे छोड़कर पहली पत्नी नहीं रही, उन्हें घर संभालने के लिए कोई चाहिए। कल्याणी चाय की प्याली के इर्द गिर्द हथेली घुमाती रही, फिर धीरे से उठकर रसोई में चली गई। लौकी छिलते समय उसे याद आ गई कोफ्ते वाली बात। अनजाने में ही बेसन भूनकर उसने लौकी कद्दूकस कर डाली। छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर तरी में डाल दिए उसने। अलग से एक बर्तन में कोफ्ते निकाल कर उन्हें बड़े करीने से सजा कर छोटी के हाथ उन्हें भाभी के घर भिजवा दिया। रात को रसोई समेटते समय आज बरसों बाद कल्याणी का मन कुछ गुनगुनाने का कर उठा। उसे याद आया कि वह भी कभी बेहद सुरीला गाती थी। समय और परिस्थिति के मार ने उसका संपूर्ण संगीत ही खुश कर दिया। इतने बरसों से उसने अपने विषय में कुछ सोचना ही छोड़ दिया था। एक मशीन सी दिनचर्या ही शेष रह गई थी। आज ना जाने क्यों अमोल को देखकर उसका मन चंचल हो उठा। उसे वह किसी भी भावना का नाम देने में असमर्थ थी। कल्याणी जान रही थी कि अमोल उसके लिए आकाश कुसुम है, किंतु फिर भी वह विवश थी। उसने अंतसा में एक अनदेखी अनजानी पीड़ा दूर तक धसती चली गई। क्या अमोल भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आते जाते कल्याणी को कभी कभी अमोल की झलक मिल जाती थी। मुस्कुराहट का आदान प्रदान हो जाता था। कुछ परिवर्तन कल्याणी ने स्वयं में भी देखा था। ना जाने कैसी मोहकता उसके भोले चेहरे को और भी सौम्य बना रही थी। उस दिन दफ्तर जाते समय नंदिता भाभी ने फिर टोक दिया, कल्याणी अमोल को उसके इंटरव्यू के लिए जाना है, तू छोड़ देगी क्या? तेरे भाई साहब बाहर गए हैं, कार भी ले गए हैं। अमोल के पैर में चोट लगी है। इतने में अमोल लंगड़ाता सा बाहर निकल आया। क्या जीजी, मैं चला जाता ख्वामखा, लेकिन कल्याणी को देखकर चुप रह गया। आइए, कल्याणी हंसकर बोली। अमोल पीछे बैठ गया। मोड़ पर जाकर उसने स्कूटी रुकवा ली। आप बैक सीट पर बैठिए, मैं चला लूँगा, अमोल ने कहा। तो कल्याणी चकित रह गई। उसने देखा अमोल के पैर में कोई चोट नहीं थी। मैं तो आपसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था, वह घृष्टता से मुस्कराया। तो कल्याणी कानों तक लाल पड़ गई। आज आप दफ्तर से छुट्टी ले लीजिए, इंटरव्यू के बाद मैं भी खाली रहूँगा, अमोल ने कहा। तो कल्याणी अचकचा गई, किंतु फिर भी उसे छुट्टी लेनी ही पड़ी। उस पूरे दिन कल्याणी और अमोल ने जैसे एक दूसरे को जाना पहचाना। जाने कैसे अदृश्य मर्यादाएं कल्याणी ने अपनी इर्द गिर्द लपेट रखी थी। उन गांठों को खोलने के लिए समय चाहिए था। देर सांझ तक वे दोनों अलग अलग अपने अपने घर लौट आए। किसी को कुछ भी पता न चला। केवल कल्याणी को लगा कि उसका पोर पोर रोम रोम नया हो गया है। अमोल की अच्छी नौकरी लग गई थी। कल्याणी को अपने साथ अपनी प्रिय रेस्तरा में ले गया। कल्याणी को नहीं पता था कि यह मृग मरीचिका उसे किस तरफ ले जा रही है। कुछ दिन बाद नंदिता भाभी बड़ा सा कपड़े का गट्ठर लेकर ऊपर चढ़ाई। तनिक हाँपते से बोली, कल्याणी जरा समय निकाल कर मेरे पर्दे सी देना, असल में अमोल के लिए रोज ही कोई ना कोई लड़की वाला आ जाता है, कभी भी रिश्ता पक्का हो सकता है। कल्याणी के मन में पीर से उठी। अमोल के साथ उसकी घनिष्ठता क्या भाभी को पता होगी? शनिवार को सदानंद चाचा फिर आए और अगली बार लड़के वालों को साथ लाने का कहकर चले गए। कल्याणी दो दिन पहले ही नए पर्दे सिलकर भाभी को दे आई थी। रविवार को उसने मीठी सेवैयां बनाई थी, सो देने चली गई। वे लोग कहीं जाने की तैयारी में खड़े थे। कल्याणी सकुचा गई, हम लोग अमोल के लिए लड़की देखने जा रहे, तू भी चल ना, जा चटपट तैयार हो जा, भाभी ने अपनापन दिखाया। नहीं भाभी, मैं क्या करूँगी जाकर, कल्याणी का गला रुद गया, लेकिन भाभी की जिद के आगे वह हार गई। लौटते समय लड़की का कमनीय सौंदर्य कल्याणी की आंखों के आगे तैरता रहा। गौर वर्ण, तीखे नैन, पढ़ी लिखी, ना करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। वे लोग अच्छा खासा पैसा भी खर्च करने को तैयार थे। भाई मुझे तो बेहद पसंद आई लड़की, नंदिता भाभी लगातार बोल रही थी। इकलौता है अमोल हम तीन बहनों में, तो बहू भी तो चांद का टुकड़ा चाहिए, वे खिलखिलाई। अमोल निर्विकार था। घर लौटते ही कल्याणी कटे वृक्ष की तरह पलंग पर गिर पड़ी। अरसे से दबे हुए आंसू निकल पड़े उसकी आंखों से। एक धारदार रुलाई, वह हिलक हिलक कर रो रही थी। ना जाने कब बाबूजी चले आए, वे उसका सिर सहला रहे थे। बेटा मैं जान रहा था कि तू अमोल को पसंद करने लगी है, पर कुछ कह नहीं पाया। नंदिता इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगी, पीछे हटना ही बेहतर है बेटा, जहाँ तक पहुँची हो वहीं से लौट ले। कल्याणी संभल चुकी थी। ठीक कहते हैं बाबूजी, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अगले दिन दफ्तर जाते समय उसे देख नंदिता भाभी लपक कर बाहर निकल आई। कल्याणी आज दफ्तर से छुट्टी ले ली, मेरी दोनों बहनें आई हैं, अमोल की बहू के लिए कुछ गहने वहने लेने हैं, तू साथ रहेगी तो अच्छा लगेगा। फिर आज ही उसकी साड़ी लेकर फॉल भी टाकनी है, तुझे ही दूंगी यह काम। एक बार कल्याणी के जी में आया कि भाभी को मना कर दे, लेकिन हमेशा की तरह वह रुक गई। उलझते हुए कुछ सोचती रही, सोचते हुए कुछ उलझती रही। फिर उसने छुट्टी के लिए दफ्तर फोन कर दिया। अमोल ने गाड़ी निकाली तो दोनों जीजियाँ चट से गाड़ी में बैठ गई। आओ ना कल्याणी, उन लोगों ने कल्याणी को बुलाया तो उसे लगा ही नहीं कि उनसे वह पहली बार मिली है। अमोल, क्या बहू पसंद नहीं आई जो ऐसे चुप बैठा है? बड़ी जीजी ने अमोल को छेड़ा। अरे हाँ, अमिता भी तो आ ही रही है ना वहाँ, उसी के साथ तो शॉपिंग करनी है, छोटी जीजी बोली। चलो हम भी देख लें नंदिता जीजी की पसंद, वे दोनों खेल खिलाईं। मार्केट में अमिता भी आई थी, दोनों बहनें उस पर निहाल हुई जा रही थी, वे उसे छेड़ रही थी, किंतु अमिता बिल्कुल तटस्थ निर्विकार चुप थी। दुकान पर साड़ियाँ पसंद करते समय, सगाई की अंगूठी लेते समय अनिता की चुप्पी असामान्य थी। ब्याह तय हो जाने पर लड़कियाँ सरमाई सी रहती हैं, सतलज छुई मुई सी, किंतु अमिता की रुखाई सभी को खटक रही थी। सगाई का सामान लेकर वे लौट गए तो दोनों ही बहनें कुड़ी कुड़ी हुई थी। साड़ी और गहने पटक कर वे धर्म से सोफे पर बैठ गई। कल्याणी ने ही साड़ी का डिब्बा खोलकर भाभी को दिखाया। नीली और संदली बनारसी रेशम की जरी की साड़ी झिलमिल कर उठी। नंदिता भावरी बावरी सी बोल उठी, अमिता को पसंद आई? भरी हुई जीजिया मानो फट पड़ी। गजब की धुनी लड़की है जीजी, घमंडी भी, पता नहीं अमोल को कैसे निभा पाएगी। बड़ी जीजी बोली, अमोल से तो निभ ही जाएगी जीजी, कोने में कैसी खुसर खुसर हो रही थी, देखा था ना? छोटी जीजी ने कहा, हमें तो अपनी सोचनी है जीजी, ऐसी नकचढ़ी भाभी आई तो मायका ही खत्म हो जाएगा। वे खार खाए बैठी थी। कल्याणी उठने को हुई, चलो भाभी, बाबूजी अकेले होंगे, उसने कहा तो भीतर से दंदनाता हुआ अमोल निकल आया। रुको कल्याणी, तुम कहीं नहीं जाओगी, वह अधिकार से बोल पड़ा। तो तीनों बहनें हतप्रद रह गईं। जी जी, तुमने ब्याह करने को कहा तो मैं मना नहीं कर पाया, चटपट तुमने रिश्ता भी देख लिया। मैं लड़की देखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था, किंतु लिहाज के मारे कुछ कह भी ना पाया। अमिता के स्वभाव की रुखाई तो मैंने भी नोटिस की थी, लेकिन इसकी वजह भी है। क्या हुआ अनमोल? नंदिता भाभी का चेहरा पीला पड़ गया था। जी जी, अमिता किसी और को पसंद करती है, घर वालों के दबाव में आकर उसने हाँ की है। घर वाले अमिता को पसंद से सहमत नहीं है, इसलिए आज ही वह घर वालों को बिना बताए उस लड़के के साथ घर छोड़ देगी। आज यही उसने मुझे बताया और मैं भी इस ब्याह से रिश्ते से इनकार करता हूँ, कहते हुए अमोल हाँफ गया। कल्याणी स्तंभ थी। अमोल सीधी बेझिझक दृष्टि से उसे देख रहा था, वह संकोच से भर उठी। तुमने अपने बारे में क्या सोचा कल्याणी? अमोल का स्वर गूंजा तो वह चौंक उठी। मैं अब क्या सोचूंगी अपने बारे में, सब कुछ तो बीत गया, कल्याणी टूटे रोए स्वर में बोली। उसकी पलकों की कोरों पर रुके दो आंसू बाहर आ गए। क्यों, अभी उम्र क्या है तुम्हारी, इतनी जल्दी जीवन से हार मान लोगी? अपने बारे में सोचने का अधिकार है तुम्हें, सारी उम्र ऐसे ही वैराग्य बनकर काट दोगी या समाज परिवार की मर्यादा ढोती रहोगी? कहो कल्याणी, एक बार कहो कि तुम्हें भी नई उम्मीदों के साथ अपना जीवन जीना है। सुबह जिस घर में इतनी चहल पहल रौनक थी, वही घर शाम को कितना साए साए कर उठा था, और उसी सन्नाटे से अमोल का स्वर गूंज रहा था। शोरगुल सुनकर बाबूजी नीचे उतर आए। कुछ पुल बीत गए, अमोल प्रश्नवाचक दृष्टि से कल्याणी को देख रहा था। मुझे ऐसा कोई कहाँ मिलेगा अमोल, जो इस विपदा में आकर मेरा हाथ थामेगा? आज तो कुंवारी लड़कियों का ब्याह भी कठिनाई से होता, फिर मैं तो विधवा हूँ, कल्याणी ने तनिक कड़क सर में कहा। क्यों नहीं मिलेगा कल्याणी, तुम पहले अपना मन तो पक्का कर लो, जहाँ चाहो वहाँ राह बनेगी। अमोल, यदि ये प्रस्ताव मैं तुमसे करूँ तब? कल्याणी व्यंग से हंसकर कुछ कड़वे स्वर में बोली। मानो वह जानती थी कि अमोल अपना मन होने के पश्चात भी बहनों के सम्मुख उसे अपनी परिणीता बनाने लेने का प्रस्ताव कभी नहीं रख पाएगा, किंतु अमोल शायद इसी पल की प्रतीक्षा में था। कल्याणी, अगर तुम सीरियस हो तो मैं पूरे होशोहवास के साथ स्वयं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, अमोल दृढ़ स्वर में बोला। उसने आगे बढ़कर कल्याणी का हाथ थाम लिया। मैं अपने सभी आदरणीय बड़ों और भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें स्वीकार करता हूँ कल्याणी। कल्याणी चकित थी। उसके उज्जवल भविष्य का नक्शा क्या विधाता खींच रहा था? जाने कैसे भाग्य का लिखा सत्य उसके मुख से अपने आप निकल गया। उसने होठों पर एक नन्ही सजल सरमाई से मुस्कान फूट पड़ी। सपनीली आंखों पर पलके झुकाए और चेहरा एक मीठी उजास से भर उठा। नंदिता भाभी, उनके पति और दोनों जीजियां सभी अवाक थे, मानो इस पूरे नाटक का अंत उन्हें ही करना था। वे सभी भीतर चले गए। कुछ देर बाद नंदिता भाभी प्रकट हुई। ठीक है अमोल, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। तेरी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। वे भावुक हो गई थी। उसी समय क्षमा मांगते हुए अमिता के घर से फोन आ गया। उसके निकट निपट कर भाभी कल्याणी के निकट आ बैठी। कल्याणी झेप रही थी, उसी के कारण नंदिता भाभी का गोरी उजली बहू लाने का स्वप्न चूर हो गया था। तभी बड़ी जीजी ने पूजा घर में जाकर शंख फूंक दिया। छोटी जीजी चट दौड़ी आई। उन्होंने कल्याणी के सिर पर नई रेशमी साड़ी का आंचल डाल दिया। कल्याणी की उंगली में अमोल की पहनाई अंगूठी दमक रही थी। उसने अनुराग भरी आंखों से अमोल को निहारा। उसे लगा कि आज बरसों की लंबी अंतहीन अंधेरी सुरंग से निकलकर वह इंद्रधनुष के सतरंगे आंगन में आकर खड़ी हो गई है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।